किसान बहनों भाइयों, आप जानते हैं भारत सरकार किसानों के विकास के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं और विकास कार्यों पर काम करती रहती है। किस तरह काम करती है, किसानों के विकास के लिए क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं FAI के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी, यानी कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फर्टिलाइजर कंपनी और FAI मिलकर किसानों का विकास किस तरह करती हैं?
बहुत धन्यवाद। भारतीय उर्वरक संघ, जिसको अंग्रेजी में दी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं उनका ये एसोसिएशन है और भारत सरकार के साथ बड़ा क्लोजली मिलकर के ये काम करते हैं। और इस एसोसिएशन का DG होने के नाते आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारतीय उर्वरक संघ ये बहुत पुरानी एक संस्था है और अनजाने तौर पर किसान भाइयों को उर्वरकों की सब्सिडी इनडायरेक्ट तरीके से जो मिलती है उसमें सारी फर्टिलाइजर कंपनियां और ये भारतीय उर्वरक संघ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज किसान भाइयों को जो यूरिया या जो भी खादें मुहैया हो रही है, उर्वरक मुहैया हो रहा है, उसका अगर फैक्ट्री का मूल्य लगाएं तो बहुत बड़ा मूल्य होता है, लेकिन किसान भाइयों को भारत सरकार और भारत सरकार के जो सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से वो सब्सिडाइज रेट में दिए जाते हैं और इस सब्सिडी को वहन करने का काम कंपनियां करती है। मतलब कंपनियां सस्ते दामों में किसानों को देती है और फिर सरकार कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती, तो तात्पर्य ये हुआ कि कंपनियों के कंधों से होते हुए ये सब्सिडी किसानों तक पहुंचती है, जिसका समाज को और किसान को तो पता नहीं चलता, लेकिन ये सारा जो भार है वो कंपनियां अपने कंधे पर होते हुए वहन करती है। जहाँ तक सवाल किसान भाइयों के हितों का है, इस देश में जब से किसान भाइयों ने उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से जो उर्वरक उत्पाद करने वाली कंपनियां, चाहे वो कॉरपोरेट क्षेत्र की हो, चाहे वो सरकार के समर्थन से चल रही PSUs हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, ये सारी कंपनियां जो उत्पादन निकालती है फर्टिलाइजर का या उर्वरकों का, उसका समुचित उपयोग किसान भाई करें इसके लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाती है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाती है। हर एक कंपनी के हर एक कार्यक्रम होते हैं। ये जो भारतीय उर्वरक संघ है ये भी हर वर्ष इस दिशा में कई कदम उठाता है। लगभग पूरे वर्ष में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके तहत उर्वरकों के इस्तेमाल के विभिन्न स्तरों की बात, चाहे वो फैक्ट्री में तैयार होने से लेकर के, तो किसानों को लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, पहली चीज। दूसरी, एक वार्षिक सेमिनार यहाँ आयोजित होता है जिसमें भारत सरकार के अधिकारी, सारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स और भारतीय उर्वरक संघ का पूरा स्टाफ, ये सब मिलजुल करके 3 दिन ये इसमें चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद में इसकी सिफारिशें निकलती है जिसको फिर से सरकार को दिया जाता है और सरकार को भी समय समय पर पॉलिसीज में किस तरह के बदलाव करने चाहिए इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से किसानों के हितों के लिए हर एक स्तर पर भारतीय उर्वरक संघ और जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां ये सतत कार्य करती रहती है।
डॉक्टर सुरेश कुमार जी, बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं ये जानना चाहेंगे, क्योंकि साल भर में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम का आयोजन आप करते हैं जिसमें देश विदेश के सभी लोग फर्टिलाइजर से जुड़े आते हैं, तो ये इसकी शुरुआत कब है और उसका क्या विषय है और क्या उद्देश्य है?
वैसे तो भारतीय उर्वरक संघ बहुत पहले से सक्रिय है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था क्योंकि हरित क्रांति जब शुरू हुई तब से उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। लेकिन भारत ऐसा देश है कि तभी से दो चीजें भारत ने की है। पहली चीज की है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, कृषि विभाग और ये उर्वरक विभाग, इनके माध्यम से फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कि इस देश में कौन से उर्वरक बेचे जाएंगे, कौन से उर्वरकों को बेचने की अनुमति दी जाए न दी जाए, इसके बारे में पूरा विचार विमर्श करने के लिए एक अलग से कंट्रोल ऑर्डर, जिसको एसेंशियल कम्योडिटी एक्ट के तहत बनाया गया है, ऐसा कंट्रोल ऑर्डर, रेगुलेटरी ऑर्डर बनाया गया है। दूसरा, भारतीय उर्वरक संघ की स्थापना जो 1955 में हुई है तब से लेकर के अभी तक ये भारतीय उर्वरक संघ भी लगातार सरकार और कंपनियों के बीच में एक कड़ी उभर के आया है और केवल इसी को नहीं, सारी उर्वरकों को लेकर के जितनी सारी चीजें हैं, बाहर से आयात करना हो, चाहे आयातित प्रकार हो, चाहे वो अपने देश में निर्माण करना हो, इन सब चीजों में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो एनुअल सेमिनार होता है ये इंटरनेशनल इवेंट है, जैसा आपने कहा, क्योंकि इसमें बहुत प्रदेश के बहुत लोग आते हैं, उसमें वैज्ञानिक भी होते हैं और उसमें उर्वरक कंपनियों के मालिक, उनके जो MDs वगैरह, बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी उसके अंदर होते हैं। चर्चा होती है किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार के जो उद्देश्य होते हैं, प्रायोरिटीज होती है, उन प्रायोरिटीज को देखते हुए भी चर्चा होती है। इसके अलावा जो नवोन्मुखी चीजें बन के आती है, नवाचार उभर के आते हैं फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, उन नवाचारों के ऊपर भी विस्तृत चर्चा होती है। पॉलिसी का एक सेशन होता है, उसमें अभी तक की विद्यमान पॉलिसीज और किसानों के फीडबैक के आधार पर किस पॉलिसी में किस तरह का परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी चर्चा होती है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे किसान बहुत छोटे छोटे गांव देहात में रहते हैं, वहां तक ये सारा उर्वरक पहुंचना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो मार्केटिंग की सारी चेंज डीलर से लेकर के हर बड़ी बड़ी बातें होती है, मार्केटिंग में भी बड़े सारे नवाचार होते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आज इंटरनेट ऑफ थिंग का जमाना है, तो इन नए टूल्स को इस्तेमाल करके किस प्रकार मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुआयामी तौर तरीके इस्तेमाल किए जाए और नवाचार किया जाए, ताकि कम से कम दामों में किसानों को बहुत बढ़िया सा माल मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा टेक्निकल सेशंस होते हैं। टेक्निकल सेशन मतलब जो बड़ी कंपनियां इतने करोड़ों रुपए लगाती है फैक्ट्री बनाने में, तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में जो प्रोसेस है उसमें भी निरंतर प्रगति होती रहती है और निरंतर बदलाव आते रहते हैं। तो उन बदलावों को स्वीकार करना, एडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना और यहाँ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसका इस्तेमाल करना, ताकि बहुत अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन किया जाए और प्रोडक्शन करते हुए गैसेस का एमिशन नहीं हो, ग्रीन हाउस गैसेस न निकले और पर्यावरण में किसी तरह का क्लाइमेट चेंज का कोई इफेक्ट न पड़े, इसकी भी बहुत खबरदारी ली जाती है। एग्रीकल्चर साइंस का जो सेशन होता है मुख्यतः वो खाद का या उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे, इस हिसाब से कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या नवाचार हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर विस्तार से होती है। तो इस प्रकार कृषि खेती से जुड़े हुए जो सेशंस है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है या ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, इन सब बातों को यहाँ पर विस्तार से चर्चा की जाती है और अलग अलग सेशंस में अलग अलग तरह का डिस्कशन होता है। और जो प्रदेश से आए हुए लोग हैं और यहाँ के लोग हैं, आपस में जब चर्चा करते हैं तो इस सेशन के अलावा, सत्र के अलावा भी बाहर जब इनफॉर्मल तरीके से आपस में चर्चा करते हैं तो उनके विचार जब मिलते हैं तो वो कुछ समझौता करते हैं, क्योंकि हमारा खाद के लिए बाहर देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो किस प्रकार कम से कम मूल्य में किसानों का अधिक से अधिक हित किया जा सकता है, यही इसका उद्देश्य होता है।
डॉक्टर सुरेश जी, तो ये एनुअल जो मीटिंग की बात आप कर रहे हैं, तो ये किस तारीख में शुरुआत होगी, उद्घाटन कौन करेंगे और इसका थीम क्या रहेगा?
इस वर्ष जो हमारी मीटिंग शुरू हो रही है वो 10 दिसंबर को शुरू हो रही है, 10, 11, 12 ये 3 दिवस की मीटिंग है। 10 तारीख को 2 बजे इसका उद्घाटन होगा और उद्घाटन हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। जो राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल मैडम, उनके भी रहने की इसमें संभावना है। साथ ही उर्वरक विभाग के सचिव महोदय है रजत मिश्रा जी, वो भी इसमें रहेंगे। कृषि विभाग के सचिव देवेश चतुर्वेदी जी है, वो एग्रीकल्चर का सेशन चेयर करेंगे। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR कहते हैं, वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी DDG ADG इस तरह के लोग भी सारे चर्चा सत्रों में उपस्थित रहेंगे। और बड़े उद्योग समूह हैं फर्टिलाइजर में, बड़ी जो कंपनियां हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, इफको क्रिफको, जो उद्यमी हैं सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जैसे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इस तरह की जो कंपनियां हैं, हिंदुस्तान उर्वरक, ये सब भी
भाग लेंगे,
ये भी भाग लेंगे और प्राइवेट वाले तो सभी भाग लेंगे। तो अपेक्षा हम ये कर रहे हैं कि लगभग 1700 से 1800 लोग इसमें होंगे जो विभिन्न चर्चा सत्रों में भाग लेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए लोग होंगे वो 200-300 होंगे, तो कुल मिला के 2000 लोग इसमें आपस में चर्चा करेंगे और इस चिंतन मंथन के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसको फिर सारे वर्ष हम अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें।
डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, आखिर में हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो उत्पादन लगातार बढ़ा रहे?
किसान भाइयों, आप लोगों से करबद्ध विनंती यही है कि जो उर्वरक है बहुत महंगे है और इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है।
बिल्कुल डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी जी, आपने बहुत सही हमारे किसान भाइयों को एक संदेश दिया है। किसान भाइयों, इसमें भी कोई दोहरानी है, जिस तरह आपके शरीर की जांच होती है ठीक उसी तरह मिट्टी की भी जांच होती है, वो सारे तत्व उसी में होते हैं। मिट्टी की भी सेहत यानी कि धरती माँ की सेहत सही रखनी है तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।